लाउडेटर येसुस क्रिस्तुस, प्रभु येसु मसीह की जय।
यह वैटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु येसु ख्रिस्त के नाम पर हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि कलीसियाई जयंती वर्ष 2025 हमारे विश्वास को मजबूत करे, हमें अपने दैनिक जीवन में पुनर्जीवित मसीह को पहचानने में मदद करे तथा हमें ख्रिस्ती आशा के तीर्थ यात्रियों में परिवर्तित कर दे। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के कार्यक्रम में प्रस्तुत है कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर अनुग्रह मिंज। श्रोताओ, हम अपने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत पवित्र हृदय पर संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र दिलेक्सित नोस, अर्थात उसने हमें प्रेम किया की चर्चा सुन रहे हैं। यह संत पापा का चौथा विश्व प्रेरितिक पत्र यीशु के पवित्र हृदय पर आधारित है। यीशु ख्रिस्त के पवित्र हृदय के सम्मुख जो जीवित और हमारे लिए उपस्थित रहते हैं, हमारा मन पवित्र आत्मा से आलोकित उनके शब्दों को समझता और हमारी इच्छा उन्हें अपने जीवन में अनुसरण करने की चाह रखती है। यह एक तरह से आत्मनिर्भर नैतिकता के स्तर पर आसानी से कायम नहीं रह सकता है। ईश्वर को सुनना और उन्हें सम्मान प्रदान करना, यद्यपि यह हमारे हृदय की एक बात है, केवल हृदय ही हमारी अन्य शक्तियों और जुनूनों को और हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को प्रभु के समक्ष श्रद्धा और प्रेमपूर्ण आज्ञाकारिता में अर्पित करने के योग्य होता है। श्रोताओं, हमारे समुदाय अलग अलग विचारों और इच्छाओं के बीच एकजुटता और सामंजस्य की स्थापना केवल हमारे हृदय से शुरू होती है, जिसे पवित्र आत्मा हममें भाई बहनों के रूप में दिशा निर्देशित करते हैं। मेल मिलाप और शांति की उत्पत्ति हमारे हृदय में होती है। यीशु का हृदय परम आनंद है, जिसे हम खुला उपहार और मिलन स्वरूप पाते हैं। उस हृदय में हम एक दूसरे के संग अच्छी तरह से और खुशीपूर्वक संबंध स्थापित करना सीखते हैं और इस भांति हम इस दुनिया में ईश्वर के प्रेम और न्याय के राज्य की स्थापना करते हैं। हमारे हृदय यीशु के हृदय के संग जुड़ते हुए इस सामाजिक चमत्कार के कार्य को करने के योग्य होते हैं। श्रोताओं, अपने हृदय को गंभीरता से लेना इस तरह हमारे लिए पूरे समाज के लिए परिणामों को लाता है। द्वितीय वैटिकन महासभा हमें शिक्षा देती है, हम में से हर एक को अपना हृदय परिवर्तन करने की आवश्यकता है। हम अपनी निगाहों को पूरी दुनिया में केंद्रित करें और उन कार्यों को देखें जिन्हें हम एक साथ करते हुए पूरे मानव समाज की भलाई कर सकते हैं, क्योंकि जिन असंतुलनों से आज हमारी दुनिया प्रभावित है, वे मानव हृदय की गहराई में व्याप्त एक घोर असंतुलन की बात को हमारे लिए बयां करती है। उन विपत्तियों पर चिंतन करते हुए जो हमारे विश्व को प्रभावित कर रही हैं, वैटिकन महासभा हमसे अपने हृदय की ओर लौटने का आह्वान करती है। यह हमारे लिए इस बात की व्याख्या करती है कि मानव अपने आंतरिक जीवन के द्वारा अपनी पूरी भौतिक दुनिया के परे जा सकता है। वे अपनी इस आंतरिकता का अनुभव तब करते हैं जब वे अपने हृदय में प्रवेश करते हैं, जहां ईश्वर जो हमारे हृदय की परख करते हैं, हमारी प्रतीक्षा करते हैं और जहां वे स्वयं ईश्वर की निगाहों में अपने भाग्य का निर्णय लेते हैं। श्रोताओं, इसका अर्थ कतई यह नहीं है कि हमें अपनी क्षमताओं पर अनुचित रूप से निर्भर होना है। आइए हम इस बात को ना भूलें कि हमारे हृदय अपने में आत्मनिर्भर नहीं है, बल्कि वे कमजोर और घायल हैं। उनमें एक अस्तित्वगत गरिमा होती है, यद्यपि इसे चाहिए कि वह अपने लिए और अधिक सम्मानजनक जीवन की खोज करे। द्वितीय वैटिकन महासभा इसकी ओर इंगित कराते हुए कहती है, सुसमाचार के उत्साह ने मानव हृदय में मानवीय गरिमा के लिए कभी ना बुझने वाली आग जगा दी है और जगाती रहती है। फिर भी इस सम्मान के अनुसार जीवन यापन करना केवल सुसमाचार का ज्ञान हासिल करना नहीं है या ना ही उसकी मांगों को तकनीकी रूप में पूरा करना। हमें ईश्वर के प्रेम की जरूरत है। आइए तब हम उनकी ओर, यीशु ख्रिस्त के हृदय की ओर, उस अस्तित्व की मूलता की ओर जो ईश्वरीय और मानवीय प्रेम की धधकती भट्ठी है तथा वह सर्वोच्च पूर्णता है जिसकी चाह मानवता कर सकती है, हम अपने को अग्रसर करें। वहां उस हृदय में हम सच्चे अर्थ में अपने को जानते और उस बात को सीखते हैं कि हमें कैसे प्रेम करना है। अंत में पवित्र हृदय समस्त वास्तविकता का एकीकृत सिद्धांत है। चूंकि यीशु दुनिया के केंद्र बिंदु में है और उनकी मृत्यु और पुनरुत्थान का रहस्य इतिहास के केंद्र बिंदु में है, जिसके कारण हम मुक्ति इतिहास को पाते हैं। सारी सृष्टि हमारे संग आगे बढ़ती और हम में एक सामान्य लक्ष्य की ओर, जो स्वयं ईश्वर है, उस अभूतपूर्ण पूर्णता में जहां पुनर्जीवित यीशु सारी चीजों का आलिंगन करते हुए उन्हें आलोकित करते हैं। यीशु के हृदय की उपस्थिति में संत पापा कहते हैं कि मैं ईश्वर से निवेदन करता हूं कि वे इस दुख से भरी दुनिया में कृपा दृष्टि करें, जहां वे हमारी तरह मानव बनकर रहने का चुनाव करते हैं। वे हमारे ऊपर अपनी ज्योति और प्रेम के अमूल्य निधि की वर्षा करें, जिससे हमारी दुनिया जो युद्धों, सामाजिक, आर्थिक असमानता और तकनीकी रूप से मानवता के लिए खतरे से भरी है, अपने में उस महत्वपूर्ण और सबसे जरूरी चीज को पुनः प्राप्त करे जो हृदय है। श्रोताओ, दिल एक्सित नोस का द्वितीय अध्याय का शीर्षक है कार्य और प्रेम के वचन। यीशु का हृदय, जो हमारे लिए व्यक्तिगत रूप में प्रेम की एक गहरी निशानी और स्रोत है, हमारे लिए सुसमाचार प्रचार के शुरू का आधारभूत सार है। यह हमारे विश्वास पर बना रहता है। वह स्रोत जो हमारे ख्रिस्तीय विश्वासों को ताजा और सजीव करता है। यीशु ने हमारे लिए अपने प्रेम की गहराई को अपनी लंबी शिक्षा में नहीं, लेकिन ठोस कार्य में व्यक्त किया है। दूसरों के संग उनका मिलन और वार्ता करने पर विचार करते हुए हम इस बात को अनुभव करते हैं कि वे हम सबों के संग किस तरह व्यवहार करते हैं, यद्यपि यह हमारे लिए कई बार कठिन हो जाता है। आइए अब हम उन स्थानों की ओर आएं जहां हमारे विश्वास का मिलन सच्चाई ईश वचन से होता है। श्रोताओं, सुसमाचार हमें इस बात का जिक्र करता है कि यीशु अपनों के पास आए। यह शब्द हमारे बारे में कहता है, क्योंकि ईश्वर हमारे संग अपरिचित के समान पेश नहीं आते हैं, बल्कि वे हमें एक निधि के रूप में देखते हैं, जिसकी वे देख रेख करते और आनंदित होते हैं। वे हमारे संग अपने लोगों की भांति पेश आते हैं। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनके गुलाम हों। वे इस बात को स्वयं अपने में नकारते हैं। मैंने तुम्हें सेवक नहीं कहा है, इसका अर्थ बल्कि हमारे लिए उनके संग एक मित्रतापूर्ण पारस्परिक संबंध को व्यक्त करता है। यीशु हमसे मिलने आए, सभी दूरियों को खत्म करते हुए अति सरल रूप में वे हमारे अति निकट आते हैं। हमारे रोज दिन के जीवन की घटनाओं में हम उनके दूसरे नाम इम्मानुएल को पाते हैं, जिसका अर्थ ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर हमारे जीवन के अंग हैं। वे हमारे बीच में निवास करते हैं। ईश्वर के पुत्र ने शरीर धारण किया और स्वयं को खाली करते हुए सेवक का रूप धारण किया। श्रोताओं, हमने कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत अपने मंगलवारीय कार्यक्रम में यीशु ख्रिस्त के पवित्र हृदय दिलेक्सित नोस पर एक चर्चा सुनी। हम आगे भी इस पर अपनी चर्चा जारी रखेंगे।
करे शांति दूत के लिए दुआ,
बखान कर रहे हैं दूत स्वर्ग के, न आएगी दोबारा ऐसी रात।
ओ प्यारी रात, ओ प्यारी रात, पुनीत है आगमन, ओ शांति रात, खुशी की रात, हमारी रात आई है।
आप वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। मंगलवार 31 दिसंबर आज वर्ष का अंतिम दिन है। पूरे 2024 में संत पापा फ्रांसिस ने शांति के लिए अडिग होकर काम किया। अनगिनत अपीलों और अवसरों पर उन्होंने सद्भावना रखने वाले सभी पुरुषों और महिलाओं से भाईचारे को बढ़ावा देने और उनका पोषण करने के लिए कहा और हम सभी को शांति का साधन बनने के लिए आमंत्रित किया। जैसे जैसे वर्ष एक नए वर्ष में परिवर्तित होता है, जयंती वर्ष के मार्ग को रोशन करने वाली आशा के साथ उनका संदेश अपनी पूरी ताकत से गूंजता है। यीशु हमारी आशा और शांति का द्वार हैं। और दुनिया भर के धर्माध्यक्षों ने 29 दिसंबर को अपने महागिरजाघरों और सह महागिरजाघरों में पवित्र मिसा समारोह के दौरान जयंती वर्ष 2025 का उद्घाटन किया। पवित्र वर्ष का केंद्रीय विषय आशा पर केंद्रित है। संत पापा फ्रांसिस ने क्रिसमस की पूर्व संध्या में संत पेत्रुस महागिरजाघर के पवित्र द्वार को खोलते हुए जयंती वर्ष 2025 का उद्घाटन किया। पवित्र भूमि में कार्डिनल पियर बत्तीस्ता पिज्जाबाला ने नाजरेत में दूत संवाद महागिरजाघर में अपने धर्म प्रांत के विश्वासियों के लिए पवित्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। समारोह की शुरुआत एक जुलूस से हुई जो नवीनीकरण और आशा की ओर सामूहिक यात्रा का प्रतीक था। जुबली के विषय का जिक्र करते हुए कार्डिनल पिज्जाबाला ने स्वीकार किया कि आशा की बात करना मुश्किल है जब हमारे आसपास ही हर चीज युद्ध, हिंसा, गरीबी और कठिनाई की बात करती है। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आशा के लिए विश्वास की जरूरत होती है और जैसा कि संत पौलुस हमें सिखाते हैं, इसके लिए धैर्य की भी जरूरत है। उन्होंने कहा, आशा के बिना धैर्य केवल त्याग है और धैर्य के बिना आशा एक भ्रम है। उन्होंने याद दिलाया कि जयंती वर्ष ईश्वर को हमारे पापों को क्षमा करने और हमारे हृदयों को नवीनीकृत करने का अवसर प्रदान करता है, जिससे हम आशा और आनंद के साथ अपनी यात्रा जारी रख सकें। और हमारी दुनिया में त्रासदी, संघर्ष और क्रूरता से ग्रसित और उन लोगों के लिए नवीनीकरण की तत्काल आवश्यकता जिनके लिए जीवन की तीर्थ यात्रा कठोर और अथक है। लंदन में वेस्टमिंस्टर महागिरजाघर में आयोजित उद्घाटन मिस्सा के दौरान कार्डिनल विंसेंट निकोल्स के चिंतन का केंद्र बिंदु भी था। उन्होंने प्रवचन में कहा कि जयंती कलीसिया के लिए रीसेट, फिर से स्थापित करने का समय है और यह पवित्र वर्ष हमें अपने जीवन में आशा के स्थान को गहरा और नवीनीकृत करने के लिए आमंत्रित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में धर्माध्यक्षों ने अपने धर्म प्रांतों में जयंती वर्ष का उद्घाटन किया। कुछ धर्म प्रांतों में उद्घाटन समारोह से पहले महागिरजाघरों में या उसके भीतर श्रद्धालुओं का जुलूस निकाला गया। जुलूस में जुबली क्रूस को शामिल किया गया, जो स्थानीय गिरजाघरों के लिए महत्वपूर्ण क्रूस है, जिसे जुबली वर्ष के दौरान एक विशेष धार्मिक भूमिका के लिए नामित किया गया है। रूस द्वारा यूक्रेनी शहरों पर लगातार बमबारी और गोलाबारी की पृष्ठभूमि में यूक्रेन के कई कैथोलिक महागिरजाघरों में जयंती वर्ष का उद्घाटन समारोह मनाया गया। ग्रीक कैथोलिक कलीसिया के प्रमुख महाधर्माध्यक्ष शेवचुक ने कीव में मसीह के पुनरुत्थान महागिरजाघर में पौत्र मिसा समारोह की अध्यक्षता की। अपने उपदेश में उन्होंने विश्वासियों को याद दिलाया कि आज यूक्रेन की आशा यीशु मसीह है। पौत्र वर्ष से पहले जारी किए गए संदेश में कीव हेलिक के प्रधान महाधर्माध्यक्ष ने कहा, ख्रिस्तीय आशा हमारे लोगों की स्थिरता और अजेयता का रहस्य है, जो युद्ध के बीच में अपने जीवन की कीमत पर स्वतंत्रता की रक्षा करना चाहते हैं, बेहतर भविष्य का सपना देखते हैं और अपने बच्चों के लिए आज एक बेहतर दुनिया का निर्माण करते हैं। और प्रेरितिक दंड मोचन के प्रमुख धर्माध्यक्ष क्रिस्टोफ जोसेफ निकील जुबली द्वारा पेश किए गए आध्यात्मिक नवीनीकरण, मन परिवर्तन और सुलह पर विचार करते हैं। वाटिकन मीडिया से बात करते हुए प्रेरितिक दंड मोचन के प्रमुख ने बताया कि हम संतों के जीवन का अध्ययन करके इसके महत्व को सीखते हैं। उनके उदाहरण को हम देखते हैं कि ईश्वर की कृपा सबसे बड़ी कमजोरियों को भी बदल सकती है। यह हमें हमारे पापों की क्षमा की आशा और पवित्रता के मार्ग पर चलने में सहायता प्रदान करती है। वे याद दिलाते हैं कि जयंती वर्ष 2025 के दौरान पूर्ण दंड मोचन प्राप्त करने के लिए विश्वासियों को कलीसिया द्वारा निर्धारित विशिष्ट शर्तों का पालन करना चाहिए। उन्हें पाप स्वीकार संस्कार, पवित्र परम प्रसाद, प्रेरितों का धर्मसार प्रार्थना, संत पापा के मतलबों के लिए प्रार्थना, दया के कार्य, पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा, पाप से पूरी तरह अलग होने की आंतरिक प्रवृत्ति, यहाँ तक कि मामूली पाप भी। साधारण जयंती वर्ष 2025 की घोषणा करने वाले बुल का उल्लेख करते हुए धर्माध्यक्ष निखिल ने कहा कि तीर्थ यात्रा किसी भी जयंती समारोह की मुख्य घटना है। तीर्थ यात्रा उद्धारक के पद चिन्हों पर एक ख्रिस्तीय की व्यक्तिगत यात्रा है। यह मानव जीवन के अर्थ को समाहित करती है। जैसा कि संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने बताया, संपूर्ण ख्रिस्तीय जीवन पिता के घर की एक महान तीर्थ यात्रा की तरह है। प्रेरितिक दंड मोचन के प्रमुख ने संकेत दिया कि पाप स्वीकार संस्कार तीर्थ यात्रा का एक अनिवार्य तत्व है, जिसे मन परिवर्तन के अनुभव के रूप में देखा जाता है। पाप स्वीकार के दौरान हम अपने पापों को पहचानते हैं और उन्हें ईश्वर के सामने प्रस्तुत करते हैं, उनसे क्षमा मांगते हैं। पुरोहित एक प्रबंधक है, यानी एक सेवक है, और साथ ही ईश्वर की दया का एक विवेकपूर्ण प्रशासक भी है। उसे पापों को क्षमा करने या बनाए रखने की गंभीर जिम्मेदारी सौंपी गई है। उधर फिदेस के वार्षिक अध्ययन में 2024 में 13 कैथोलिक मिशनरियों की मृत्यु की रिपोर्ट दी गई है, जिनमें 8 पुरोहित और 5 लोकधर्मी शामिल हैं। वे पुरुष और महिलाएं जिन्होंने अपना जीवन कमजोर समुदायों की सेवा करने के लिए समर्पित कर दिया, अक्सर हिंसा, गरीबी और सामाजिक अन्याय से भरे क्षेत्रों में होते हैं। रिपोर्ट में मिशनरी शब्द का विस्तार किया गया है, जिसमें प्रेरितिक कार्य में शामिल सभी कैथोलिकों को शामिल किया गया है जो अपने विश्वास को जीते हुए मारे गए, चाहे उनकी मृत्यु शहादत के लिए सख्त मानदंडों को पूरा करती हो या नहीं। और इसी के साथ वाटिकन रेडियो से हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ। अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।